नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमा नेगी
और मैं जगत चंदौली
लेकर आए हैं आपके लिए फिर एक बार आपका पसंदीदा कार्यक्रम
नई दिशा। प्रेमा, जानती हो आज मुझे एक खास बात मालूम चली है।
खास बात? वो क्या जगत?
यही कि समाज में आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर नहीं समझा जाता।
हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सच कहते हो जगत। मगर ये बात तुम्हें आज पता चली है? इस बात का मुझे और भी ज्यादा अफसोस है।
अरे अरे प्रेमा, इसमें अफसोस करने जैसी कोई बात नहीं है। देखो, मुझे तो ये बात पहले से मालूम थी। मैं तो तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ कि समाज में महिलाओं से पहले ही भेदभाव किया जाता है, लेकिन अगर दुर्भाग्य से कोई महिला HIV संक्रमित हो जाती है तो उसके साथ होने वाला ये भेदभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
अच्छा, लेकिन ऐसा कैसे?
अरे भाई, ये बात अभी बताने की नहीं है।
क्यों भाई?
क्योंकि प्रेमा, ये बात हम अपने श्रोताओं को बताएंगे हमारे सेगमेंट जानो अनजाने में। दोस्तों, समाज में आज भी लड़के और लड़की में अलग अलग समय पर अलग अलग किस्म का भेदभाव किया जाता है, जबकि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि दोनों के ही समाज में बराबर अधिकार हैं, दोनों को ही समाज में समान ढंग से जीने का हक है। लेकिन दुर्भाग्य से फिर भी कई सारे घरों में इस बात को तवज्जो नहीं दी जाती। जहां बेटे को उसके सभी अधिकार दिए जाते हैं, वहीं बेटियों को कई तरह से दबाया जाता है। अब मसलन, ऊंची आवाज में मत बोलो, ज्यादा सवाल मत किया करो, समझी तुम? सेक्स और HIV की जानकारी तुम्हारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। हाँ,
क्यों प्रेमा, ऐसा होता है कि नहीं?
बिल्कुल ऐसा होता है।
अब देखो ना, इस तरह से वो यौन शिक्षा से दूर रहती हैं और अपने अधिकारों की मांग भी नहीं कर पाती, यानी उसमें सक्षम नहीं हो पाती,
और यौन शिक्षा से अनजान रहते हुए आगे चलकर HIV से अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाती।
हाँ।
और ये तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ जानकारी नहीं है वहाँ सुरक्षा हो ही नहीं सकती।
बिल्कुल। और दोस्तों, जहाँ लड़कों को कई तरह की छूट है, वैसे दोस्तों मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी लड़कों को HIV की पूरी पूरी जानकारी है, मगर कम से कम जानकारी हासिल करने के लिए उन पर ऐसी बंदिशें तो नहीं है जो लड़कियों पर थोपी जाती हैं। और यही वजह है दोस्तों कि ज्यादातर लड़कियाँ इस विषय पर बात नहीं कर सकती।
और यही वजह है कि अधिकतर लड़कियाँ शादी के बाद अपने जीवन साथी से कॉन्डोम के इस्तेमाल करने की बात को भी नहीं कह पाती।
तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, जब हमारे देश की लड़कियाँ, यानी कि देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा यौन शिक्षा से अनभिज्ञ होगा, तो HIV की रोकथाम कैसे होगी?
बिल्कुल। और दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जागरूक बनिए और जागरूक बनाइए, सिर्फ लड़कों को ही नहीं बल्कि लड़कियों को भी।
हाँ, तो दोस्तों ये था जानो अनजाने का हमारा आज का सेगमेंट। अगर आप हमसे इस संबंध में या फिर HIV से जुड़ी कोई भी अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक खतों या फिर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं।
और खत लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
इसके अलावा आप हमसे ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है naydisha@gmail.com।
जवाब यारो, ये तुमको हुआ क्या? आज हमको देखो जरा, ये माना अभी है खाली हाथ, न होंगे सदा यही दिन रात, कभी तो बनेगी अपनी बात। अरे यारो मेरे प्यारो, मेरी मानो।
और दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे इनामों से भरे सेगमेंट यानी कि
भेजा फ्राई की तरफ। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था, एक सामान्य व्यक्ति में CD4 की सामान्य संख्या कितनी होनी चाहिए?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 700 से 1000 तक।
और एपिसोड 43 का सही जवाब देकर हमारे आज के विजेता बन गए हैं अजय कुमार लुधियाना पंजाब से। आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो।
और दोस्तों अब हमारा आज का सवाल।
और आज का सवाल है, HIV संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड का क्या मतलब है? अपना सवाल एक बार फिर से सुनिए, HIV संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड का क्या मतलब है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए, एक छोटी सी अवधि जिसमें आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बी, HIV संक्रमण होने और उस संक्रमण के HIV टेस्ट में दिखने के बीच का समय, सी, वो समय जब HIV ड्रग सबसे अधिक कारगर होते हैं, और डी, वो समय जब सुबह खिड़की खुलती है। अपने ऑप्शंस एक बार फिर से सुने, ए, एक छोटी सी अवधि जिसमें आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बी, HIV संक्रमण होने और उस संक्रमण के HIV टेस्ट में दिखने के बीच का समय, सी, वो समय जब HIV ड्रग सबसे अधिक कारगर होते हैं, और डी, वो समय जब सुबह खिड़की खुलती है।
तो दोस्तों अगर आपको जवाब मालूम है तो सोच क्या रहे हैं, फटाफट अपना मोबाइल फोन उठाइए, टाइप कीजिए ND47, भेजा फ्राई स्पेस और अपना जवाब ए बी सी या डी, और लिखकर हमें भेज दीजिए 9717678223 पर।
और अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट आमने सामने का। तो दोस्तों आमने सामने में हमारे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान, जिनके साथ हम बात करने वाले हैं HIV से जुड़े एक और खास मुद्दे पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए।
मेरा नाम शर्मिल दुबे है, मैं एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन में एज ए काउंसलर पद पे काम कर रहा हूँ।
अच्छा, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये है कि किस तरह से काउंसलर एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति को अपने HIV पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट के साथ डील करने में मदद करता है?
कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव होता है तो हम पहले देखते हैं उसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्या स्थिति है, उस अनुसार हम व्यक्ति को तैयार करते हैं कि वह अपनी इस रिपोर्ट जानने की स्थिति में है, या फिर हम उसको और काउंसलिंग कर करके उसको तैयार करते हैं, फिर उसको हम रिपोर्ट देते हैं।
अच्छा ये बताइए, आज भारत में HIV पॉजिटिव लोगों के प्रति भेदभाव ना हो, खासकर अस्पतालों में या नौकरी के चयन के दौरान या फिर जहां वो लोग काम करते हैं, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है?
लोगों में जानकारियां दी जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि HIV क्या है मुख्य रूप से, और हर जगह पे समाजसेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कार्य कर रही है, और यह जो HIV संक्रमण है यह छूने चूमने, हाथ मिलाने, एक साथ रहने, इन सब चीज़ों से नहीं फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को यह पता चलता है कि किसी को HIV संक्रमण है तो उसके साथ हमेशा प्यार से बातें करना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ खाना पीना रहना चाहिए। अगर किसी को कुछ ऐसा परेशानी होता है कि कोई भी उसके कार्यस्थल पर या किसी हॉस्पिटल में उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है, अगर वह कानूनी रूप से मदद चाहता है तो दिल्ली में लायर कलेक्टिव वार्निंग्स एक संस्था है जो कि इस संबंध में कार्य करती है, वहां जाकर के इससे संबंध में सलाह ले सकता है।
जी अच्छा, कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि जब एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति किसी को भी अपना HIV स्टेटस नहीं बताना चाहता, अपने परिवार में किसी को भी नहीं, यहाँ तक के अपनी पत्नी को भी नहीं, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है?
कोई भी व्यक्ति अपनी स्टेटस को बताए या न बताए यह उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन काउंसलर होने के नाते हम लोग उस व्यक्ति को इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं, उसको समझाते हैं कि अगर वह अपनी इस स्टेटस को अगर नहीं बताता है तो उसके फैमिली में भी आगे भी यह बीमारी फैल सकती है, क्योंकि यह उसी तक सीमित नहीं रहेगी। अगर वह अपने जीवन साथी को बताता है तो उसे भी संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है, और जो बच्चा पैदा होगा उसे भी बचाया जा सकता है।
जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के मेहमान, जिनसे अभी हम बात कर रहे थे HIV के बारे में। हमें उम्मीद है दोस्तों, बल्कि पूरा यकीन है कि HIV के प्रति आपकी जानकारियों में कुछ और इजाफा जरूर हुआ होगा।
और अब दोस्तों, समय है आपके सवालों का जवाब देने का, जो कि आप हमसे जानना चाहते हैं। तो चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट आपकी बात की तरफ।
तो दोस्तों, आपकी बात में आज हम जो खत पढ़ने वाले हैं, इसे हमें लिखकर भेजा है संदीप जी ने खाड़ी से। और वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को HIV/AIDS हो गया है और उसके साथ उसके परिवार में, समाज में या कहीं भी भेदभाव होता है, तो उसे क्या करना चाहिए?
संदीप जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली सलाह उनके लिए होगी कि वो अपने आप को मजबूत बनाए, और यही नहीं बल्कि इस परिस्थिति का सामना करते हुए उन्हें कानूनी सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि किसी भी परिवार के व्यक्ति को सिर्फ HIV/AIDS होने पर ना तो अलग किया जा सकता है और ना ही उसके किसी भी पारिवारिक अधिकार से उसे वंचित किया जा सकता है। और एक और जरूरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं कि देश में कुछ NGOs हैं जो HIV-पॉजिटिव लोगों की इस सिलसिले में कानूनी मदद करती हैं।
चल तो तू पड़ा है, फासला बड़ा है, जान ले अंधेरे के सर पे खून चढ़ा है, इंसान के शहर में इंसान खोज ले तू, ओ रात के मुसाफिर तू भाग ना संभल के।
तो दोस्तों, अगर आप हमसे HIV के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप अपना सवाल हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं।
और इसके अलावा अगर कार्यक्रम के संबंध में आप कोई राय अथवा सुझाव हमें भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें चिट्ठी और ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। चिट्ठी भेजने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम नई दिशा, 177 बेसमेंट अशोका इंक्लेव 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद 121003, हरियाणा।
हमारा ईमेल आईडी है नई दिशा NAYEDISHA@gmail.com।
और दोस्तों, अब समय हो चुका है आपके मनोरंजन का, यानी कि हमारे रेडियो धारावाहिक जीवन की राह का। पिछले हफ्ते के एपिसोड में आपने सुना जयपाल के HIV-पॉजिटिव होने की बात जानकर प्रधान जयपाल के घर जाता है। वो उसे काफी बुरा भला कहता है और पंचायत में घसीटने की धमकी देता है।
उधर विनोद अपने HIV-पॉजिटिव होने की बात से परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस बात को रविता को कैसे बताएगा। आइए अब सुनते हैं कि कहानी क्या मोड़ लेती है।
माँ जी, अरे माँ जी, क्या हुआ आपको?
माँ, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है?
बेटा, अगर वो प्रधान ने सचमुच गांव वालों को तुम्हारे बारे में बता दिया तो हम कहाँ जाएंगे बेटा?
माँ देख, हर समस्या का हल होता है, इसका भी कोई ना कोई उपाय जरूर निकल जाएगा।
हाँ माँ, और वैसे भी कानून भी तो हमारे साथ है ना, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता।
हाँ माँ, सारे लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। अरे सब जानते हैं प्रधान कैसा आदमी है। तू घबरा मत, कुछ नहीं होगा
बेटा।
जयपाल, ओ जयपाल।
तेजी चाचा, आप?
अरे दूर हट, दूर हट।
तेजी चाचा,
तुम्हारे खिलाफ शाम को पंचायत बैठने वाली है, तुम्हें वहाँ हाजिर रहना होगा।
तेजी चाचा,
चलता हूँ।
सुमन, तेरी परीक्षा कैसी रही?
बहुत अच्छी रविता, सारे प्रश्नों का जवाब मुझे मालूम था।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, और तेरी परीक्षा का क्या हुआ? अच्छी हुई ना?
हाँ, एक दो प्रश्न थोड़े मुश्किल थे, लेकिन जैसे तैसे हल कर दिए। अब सही है या गलत पता नहीं, लेकिन हाँ, मैंने एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है।
क्या पता सर तुम्हारे प्रश्न हल करने की कोशिश पर ही तुम्हें नंबर दे दे।
सुमन।
अरे मोहित।
अरे मोहित, तुम्हारी परीक्षा कैसी रही?
बहुत अच्छी, सभी प्रश्नों के उत्तर आते थे मुझे।
क्या बात है, मुझे उम्मीद है तुम्हें इस बार तुम्हारी स्कॉलरशिप जरूर मिल जाएगी।
हाँ उम्मीद तो है।
जयपाल, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है?
पंचम, ये बात सच है कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ।
जयपाल एचआईवी पॉजिटिव है?
अरे ये क्या कह रहा है?
वैसे ये एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है भाई?
अरे छोड़ ना, सुना है शहरी बीमारी है, लाइलाज है, एड्स का नाम सुना नहीं तूने?
तो इससे दूरी रहना होगा। आया क्यों लौट कर?
अरे गाँव में कैसी मुसीबत आ गई।
लेकिन पंचम, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से गांव वालों को कोई परेशानी हो और जिसके लिए मुझे कोई सजा दी जाए। और वैसे भी एचआईवी एक साथ खाना खाने उठने बैठने से नहीं फैलती है।
अच्छा अच्छा, भाषण मत दे, हमें सब पता है। देखा देखा गांव वालों, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। अरे इससे बड़ा गलत काम क्या होगा कि ये शहर से एक भयंकर बीमारी ले आया है।
नहीं, नहीं,
और अगर कोई इसके आसपास भी फटका ना तो उसे भी ये बीमारी लग जाएगी। सुन लो।
नहीं 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 भाइयों, नहीं। देखो मुझे कोई छूत की बीमारी नहीं है जो किसी को भी मेरे आसपास आने से लग जाएगी।
जी हाँ, जयपाल की इस बात से मैं सहमत हूँ पंजनों। मैंने इस बीमारी के बारे में कई जगह सुना है और पढ़ा भी है। ये छूने से या आसपास जाने से नहीं फैलती और ना ही एक साथ खाना खाने और शौच से फैलती है।
आप तो ऐसे कह रहे हैं राजन जी, जैसे आप इस बीमारी के बारे में सब कुछ जानते हैं। कहीं आपको भी तो।
जी
प्रधान जी, बात इधर उधर की ना हो, जिस मुद्दे पर चर्चा करने हम आए हैं उसी बात पर टिके रहें तो बेहतर है।
बिल्कुल ठीक कहा पंच जी। प्रधान जी, आप यूं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते। सुना तो मैंने भी है इस बीमारी के बारे में, तो क्या फिर मैं भी एचआईवी पॉजिटिव हूँ? अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है, अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी के एचआईवी पॉजिटिव होने की बात समाज के सामने लाता है तो वो खुद भी कानून का गुनहगार है।
कटोरी
कटोरी सही कह रही है प्रधान जी, कानून की नजर में एचआईवी पॉजिटिव लोगों के प्रति इस तरह का भेदभाव गलत है और पंचों की नजर में भी। जयपाल पर कोई आरोप नहीं बनता। क्या इसी बात पर आपने पंचायत बुलाई थी? आपने तो कहा था जयपाल ने गांव के प्रति विश्वासघात किया है। जयपाल इस गाँव का सदस्य है और सिर्फ एचआईवी पॉजिटिव होने की वजह से उसके साथ भेदभाव किया जाए या फिर उसे गाँव से निकाला जाए, ये गलत है। जयपाल जैसे गांव में रहता आया है वैसे ही रहेगा और गांव के सभी लोगों को जयपाल को वही मान सम्मान देना होगा जैसे कि पहले देते आए हैं। यही पंचायत का फैसला है।
जय हो गंगा मैया की। भाई वाह, मजा आ गया।
यह कोई फैसला है भाई, अब बताओ तो प्रधान क्या करेंगे?
नाक कट गई उसकी तो।
क्या हुआ विनोद बेटा, तू तो इतना परेशान क्यों है?
माँ ये मैं पिताजी के बारे में क्या सुन रहा हूँ?
क्या सुनकर आ रहा है हमारा बेटा, जरा हम भी तो सुने।
यही पिताजी कि जयपाल के एचआईवी पॉजिटिव होने की बात आप सब गांव वालों के सामने ले आए।
हाँ सही सुना है, और गांव वालों को इसका पता चलना ही चाहिए था।
पता चलना चाहिए था, लेकिन क्यों पिताजी? ये बात तो अगर किसी को पता भी चल जाए तो उसे छुपाए रखना हमारी ही तो सामाजिक जिम्मेदारी बनती है ना पिताजी।
तुम मेरे बेटे हो और एक बेटा अपने बाप को समझाता हुआ अच्छा नहीं लगता कि उसके बाप की क्या जिम्मेदारी है और क्या नहीं।
लेकिन आखिर फैसला क्या आया? पंचों ने तो आपकी सारी बात को सिरे से नकार दिया और उसको बाइज्जत गांव में रहने की इजाजत भी दे दी ना पिताजी।
यही तो मैं चाहता था।
क्या?
हाँ मुझे पता था पंच मेरी बात कभी नहीं मानेंगे क्योंकि कानूनन ये सही नहीं है। मेरा मकसद जयपाल को गांव से निकालना नहीं बल्कि उसे तिल तिल करके मारना है। पंचों ने भले ही उसे बाइज्जत गांव में रहने की इजाजत दे दी लेकिन उसकी असली सजा तो अब शुरू हुई है।
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं ऐसा आप?
आखिर हुआ क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले।
हुआ क्या है, उससे किस तरह जुबान लड़ा रहा है ये?
अरे अगर उसकी जगह आपका अपना बेटा खड़ा होता तो क्या आप भी उसके साथ ऐसा ही करते जैसा?
विनोद,
शर्मा रही है मुझे आपको अपना पिता कहते हुए। नफरत करता हूँ मैं आपसे, नफरत करता हूँ।
विनोद बेटा।
नहीं माँ नहीं, ऐसा इंसान ना तो किसी गांव का प्रधान कहलाने लायक है और ना ही किसी का बाप।
विनोद कहाँ जा रहा है, रुक तो सही। विनोद
रोटी भी, दाल भी निकाल देती हूँ। आज तो इनके पसंद की दाल बनी है। सुनिए सुनिए, कहाँ ध्यान है आपका? खाना लगा दिया है, चलिए खा लीजिए।
नहीं शीला, मुझे भूख नहीं है।
क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं?
हाँ शीला, गांव में आज जो प्रधान जी ने जयपाल के साथ किया वो ठीक नहीं किया।
मैंने भी कुछ कुछ सुना है, लोग जयपाल के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं।
शीला मुझे दुनिया का भय नहीं है, डर तो सिर्फ इस बात का है कि अगर कल को हमारे बारे में भी बाहर वालों को पता चल जाता है कैसे भी, और हमारी बेटी बाहर से ये बात सुनकर आए उसके माता पिता HIV पॉजिटिव हैं, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा?
मुझे भी लगता है हमें सुमन को अपने बारे में बता देना चाहिए।
तुम ठीक कहती हो शीला, मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही सुमन को हमारे HIV पॉजिटिव होने के बारे में बता दूं।
वैसे सुनिए, कुछ दिन बाद सुमन का जन्मदिन है, अगर ये बात उसके जन्मदिन पर उसको बताई जाए तो?
ये तुम क्या कह रही हो शीला, अरे जन्मदिन पर तो हमें उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहिए, और तुम?
अरे अपनी बेटी को समझदार बनाने से अच्छा तोहफा भला और क्या हो सकता है?
शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं देखता हूँ।
अच्छा चलिए, अब आप ज्यादा मत सोचिए और खाना खा लीजिए।
हाँ चलो
चलिए।
तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा रेडियो धारावाहिक जीवन की राह, और अब बात क्या किया जाए की,
जहां हमारे सामूहिक संवाददाता रखते हैं आपके सामने एक सवाल और आपको देना होता है उसका जवाब।
तो दोस्तों, इस बार हमारे सामूहिक संवाददाताओं ने हमारे कुछ श्रोताओं से पूछा कि अगर किसी महिला को पता चलता है कि उसके पति का उसके अलावा किसी और महिला के साथ भी संबंध है, तो ऐसे में उस महिला को क्या करना चाहिए?
ऐसे में उसे सबसे पहले अपने पति से पूछना चाहिए और अपनी गलतफहमी को दूर करने का उपाय सोचना चाहिए। अगर उसका शक यकीन में बदल जाए तो उसे सबसे पहले अपने पति को समझाकर ऐसे गलत संबंधों के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि ऐसे असुरक्षित संबंधों से HIV फैलने का खतरा रहता है।
जो शिक्षित परिवार है उनको आपस में खुलकर बात करनी चाहिए कि बाहर यदि शारीरिक संबंध रखे हैं तो उससे एड्स हो सकता है। पहले तो मेरे ख्याल से रखना ही नहीं चाहिए शारीरिक संबंध बाहर, यदि अगर कोई शारीरिक संबंध कर भी रहा है तो कंडोम आदि का इस्तेमाल करना चाहिए।
ऐसे में पत्नी को इस विषय में खुलकर बातचीत करनी चाहिए और ऐसे गलत संबंधों से HIV फैलने की भी संभावना रहती है, इस विषय में चर्चा करनी चाहिए।
तो दोस्तों, ये थे हमारे श्रोताओं के विचार, लेकिन इन विचारों को सुनने के बाद मैं तो यही कहूँगी कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी और के साथ संबंध रखना न सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ बेवफाई है, बल्कि खुद को और अपने परिवार वालों को भी खतरे में डालने वाली बात है।
प्रेमा, मैं भी तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो दोस्तों, हमारे श्रोताओं के विचारों को जानने के लिए हम अपने सामूहिक संवाददाताओं का धन्यवाद करते हैं।
इसके अलावा हम हेवल वानी और मंदाकिनी की आवाज़ सामुदायिक रेडियो का भी धन्यवाद करते हैं, जो आपके विचारों और हमारे इस कार्यक्रम को उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
और साथ ही हम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के भी शुक्रगुजार हैं, जिनके वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कम्बाइन द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है।
और अब आ गई है विदाई की घड़ी, लेकिन जाने से पहले एक बार हमारा नंबर फिर से नोट कर लीजिए, जिस पर आप पूछे गए सवाल का जवाब SMS कर सकते हैं
और जीत सकते हैं हमारी भेजा फ्राई कैप। जवाब SMS करने के लिए हमारा नंबर है 9717678223, यानी 9717678223।
और दोस्तों, अब मुझे और जगत को दीजिए इजाजत, हमारी और आपकी अगले हफ्ते इसी समय फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।